नमस्कार भारत, तारीख 2 अक्टूबर दिन मंगलवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप का आयात शुल्क को लेकर तंज, भारत को बताया टैरिफ किंग।
इंडिया which is the tariff king, they called us and they say we want to start negotiations immediately।
दिल्ली की सीमा तक पहुंची किसान क्रांति यात्रा, प्रशासन सतर्क, क्या है मांगे?
पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो, जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर उन्होंने हटा दिए उसको बहाल कर जाए।
और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खास, दक्षिण अफ्रीका में कौन सहेजे हुए है बापू की विरासत?
ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत सैनी से। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया है। उन्होंने कहा कि भारत उन्हें खुश करने के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करना चाहता है। उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा कि भारतीय अधिकारी चाहते हैं कि व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत जल्द से जल्द शुरू हो। ट्रंप ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि भारत तुरंत अमरीका से बातचीत करे। ट्रंप के बयान पर अभी तक भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय मूल की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। आईएमएफ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। वो इस साल के अंत में रिटायर हो रहे मॉरी ऑब्सफेल्ड की जगह लेंगी। गीता गोपीनाथ इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। केरल सरकार ने गीता को पिछले साल राज्य का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया था। गीता का जन्म केरल में ही हुआ था। गीता ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भारत में की है। इसके बाद साल 1994 में वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी चली गई थी। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट को और गहरा होने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने यमन युद्ध के सभी पक्षों से न्यूयॉर्क में मुलाकात के बाद बीबीसी से बात की। उन्होंने कहा कि यमन पर अकाल का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए शांति वार्ता तुरंत शुरू की जानी चाहिए। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा,
आई थिंक इट वाज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फॉर द यूएन टू इश्यू दैट वार्निंग इन गुड टाइम।
सही वक्त पर चेतावनी जारी करना संयुक्त राष्ट्र के लिए बेहद जरूरी था, लेकिन इससे यमन को लेकर हमारी चिंता बढ़ गई है। यमन पहले से एक बड़े मानवीय संकट से जूझ रहा है और अकाल से ये संकट और गहरा हो जाएगा। एक मध्यस्थ होने के नाते मुझे सभी पक्षों को बातचीत के टेबल पर जल्द से जल्द लाना होगा। ये थे यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। शुक्रवार को सुनामी और विनाशकारी भूकंप की चपेट में आए इंडोनेशिया ने खाने, दवाइयों और भारी उपकरणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इंडोनेशिया को मदद की पेशकश भी की है। इस बीच मलबे में दबे कई लोगों को निकालने का काम अब भी जारी है। इस्लामिक रिलीफ चैरिटी के रिद्वान रॉचमैन के मुताबिक जरूरतमंदों तक मदद पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती है।
Our main challenge in the Palu, where the earthquake happened, is the remoteness of its area.
भूकंप से प्रभावित हुए पालू के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये इलाके भूस्खलन और सुनामी की वजह से कट गए हैं। रास्तों को साफ करने और राहत और बचाव का काम जारी है। ये थे इस्लामिक रिलीफ चैरिटी के एक अधिकारी के शब्द। कैटलोनिया में हजारों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। ये प्रदर्शनकारी बार्सिलोना और अन्य शहरों की मुख्य सड़कों पर स्पेन से आज़ादी के लिए हुए विवादित जनमत संग्रह की पहली बरसी मना रहे थे। बार्सिलोना में 1000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मार्च निकाल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने कैटलोनिया की संसद के बाहर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने रेल यातायात को भी बाधित कर दिया था। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है। जनमत संग्रह के कुछ हफ्तों बाद कैटलोनिया की अलगाववादी सरकार ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, लेकिन स्पेन की सरकार ने जनमत संग्रह को अवैध करार दिया था। ईरान में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। ईरान के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बीते 3 हफ्तों में सैकड़ों लोग जहरीली शराब से बीमार पड़े हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। आज महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की 150वीं जयंती है। महात्मा गांधी के बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यकीन ही नहीं होगा कि हाड़ मास का ये व्यक्ति कभी धरती पर चला भी होगा, लेकिन फिलहाल वो वक्त काफी दूर लगता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तमाम मौकों पर महात्मा गांधी को प्रतीक के तौर पर सामने रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। भारत की केंद्र सरकार के स्वच्छता मिशन से भी महात्मा गांधी प्रतीक के तौर पर जुड़े दिखते हैं। वो भारतीय मुद्रा नोट पर भी मौजूद हैं। और तो और, अपनी तमाम मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे किसानों ने भी दिल्ली पहुँचने के लिए आज की तारीख को ही चुना है। हम किसानों की बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि भारत में आज़ादी के आंदोलन से जुड़ने के पहले जिस दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी ने अपनी कर्मभूमि बनाया था, वहां उनकी यादें किस तरह सहेजी गई हैं। लेकिन नमस्कार भारत की शुरुआत करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयात शुल्क को लेकर तंज करते हुए भारत को टैरिफ किंग बताया है, यानी उनका कहना है कि भारत आयात शुल्क लगाने के मामले में बादशाह है। ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि भारत उन्हें खुश करने के लिए अमेरिका के साथ जल्दी से जल्दी बातचीत करना चाहता है। पूरी रिपोर्ट सुनिए सलीम रिजवी से।
सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच एक नए व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ आयात शुल्क के मामले में जारी तनाव के बारे में कहा कि भारत तो टैरिफ किंग या बहुत अधिक शुल्क लागू करने वाला देश है।
India, which is the tariff king, they called us and they say we want to start negotiations immediately.
भारत जो टैरिफ किंग है, उन्होंने हमें कॉल किया और कहा कि हम अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता करने के लिए फौरन बातचीत करना चाहते हैं। जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि बॉब लाइटहाइजर ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम आपके राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी मोटरसाइकिल्स हार्ली डेविडसन का हवाला देते हुए कहा कि उन पर भारत में 100% की दर से आयात शुल्क लगाए जाने के बारे में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में पहले किसी अमरीकी ने बात ही नहीं की और शुल्क दर कम करने का वादा किया। ट्रंप का कहना था कि भारत ने अमरीकी मोटरसाइकिलों पर शुल्क दर कम तो किया है, लेकिन वो काफी नहीं है, उसे और कम करना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने कहा कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है और अब भारत टैरिफ्स के मुद्दों पर और अधिक काम करना शुरू करेगा।
My relationship with India is great, with Prime Minister Modi is great, and they're going to start doing a lot.
ट्रंप ने यह भी कहा कि जापान, चीन, यूरोपियन यूनियन और भारत आदि देशों के साथ अमेरिका के जो व्यापार समझौते मौजूद हैं, उन पर चर्चा जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे अपनी जगह, लेकिन अमेरिका के पिछले कई प्रशासनों के लोग व्यापार के मामलों में भारत के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप व्यापार के मामले में विभिन्न रैलियों और अन्य मंचों पर अन्य कई देशों के साथ साथ भारत के साथ भी सख्ती की बात करते रहे हैं। पिछले चंद दिनों में कम से कम 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर अमरीकी उत्पादों और अन्य वस्तुओं पर बहुत अधिक आयात शुल्क लगाने का आरोप लगा चुके हैं और ये धमकी भी दे चुके हैं कि भारत से अमरीका आने वाली वस्तुओं पर अमरीका भी अधिक आयात शुल्क लगाएगा। भारत और अमरीका पिछले कई महीनों से व्यापार संबंधी वार्ताएं भी करते रहे हैं और पिछले महीने ही अमरीका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि मार्क लिंस्कॉट भारत में उच्च अधिकारियों से दोनों देशों के बीच व्यापार पर चर्चा करने गए हुए थे। जानकार मानते हैं कि अमेरिका के भारत के साथ अच्छे रिश्ते तो हैं, लेकिन आर्थिक मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन रियायत नहीं करता। डेलवेयर यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं,
अमरीका को देखिए कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक अलग सोच है और इकोनॉमिक लेवल पे एक अलग सोच है। तो इकोनॉमिक लेवल पे उन्होंने जो टैरिफ लगाए वो इंडिया को हर्ट कर रहे हैं। जो H1B का जो प्रोग्राम था, जिसमें तकरीबन 80-85% जो लोग जिनको H1B मिलता है, ये वो वीजा है जिसमें टेक्नोलॉजी के लोगों को मिलता था, मोस्टली इंडियंस को जाता था। तो वो पसंद नहीं आ रहा है ट्रंप को। वो कह रहा है कि ये बेसिकली हाई पेइंग जॉब्स बाहर भेज रहे हैं।
इस वर्ष मार्च महीने में ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के देशों के स्टील के अमेरिका में आयात पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। भारत पर भी उस फैसले का असर हुआ था और उसने जवाबी कदम भी उठाए थे। भारत ने अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन या WTO में शिकायत भी की थी। व्यापार को लेकर भी अमरीका और चीन के बीच भी एक दूसरे की विभिन्न वस्तुओं और उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ाने पर खींचतान जारी है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब बात इंडोनेशिया की। शुक्रवार को आए भूकंप और सुनामी के बाद मुश्किल में घिरे इंडोनेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है। आपदा प्रभावित सुलवेसी में पीड़ित खाने के सामान की कमी से जूझ रहे हैं। उपकरणों के अभाव में राहत काम में भी दिक्कत आ रही है। पालू में अब भी मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। इस बीच थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया को मदद का प्रस्ताव दिया है। सेव द चिल्ड्रन संस्था की सेलिना संबंग ने हालात की जानकारी देते हुए कहा,
Right now the government priority is to open up access through air, sea and land.
फिलहाल सरकार की प्राथमिकता हवाई, समुद्री और सड़क मार्ग को दोबारा खोलना है। दूसरी प्राथमिकता बिजली और पानी की आपूर्ति को बहाल करना है। संचार तंत्र को भी ठीक करना जरूरी है क्योंकि अभी जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल है। हमें जकार्ता में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नुकसान का पैमाना बहुत बड़ा है। अब तक 844 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये थी सेव द चिल्ड्रन की सेलिना जो हालात की जानकारी दे रही थी। और अब रुख भारत का। अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली तक मार्च कर रहे किसान राजधानी दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर प्रशासन सतर्क है। किसानों का दावा है कि वो दिल्ली में किसान घाट तक जाएंगे। किसानों की अगुवाई कर रही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने बात की और उनकी मांगों के बारे में पूछा।
अभी हम यहाँ पे साहिबाबाद आगे दिल्ली के बॉर्डर पे है, 1 किलोमीटर दूर यहाँ से बॉर्डर रहेगा। अभी बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे सुबह 9 बजे।
जो पूरा आंदोलन है, आपने जो पूरा किसान मार्च निकल रहा है, इसमें भारतीय किसान यूनियन के अलावा और कौन कौन से संगठन शामिल है और कितने लोग हैं इसमें?
1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं अभी इसमें शामिल। और इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर हैं, अपने कर्नाटक, तमिलनाडु, ये लोग भी इसमें कल भी शामिल हो जाएंगे। पंजाब है, ये सब लोग हैं इसमें।
तो आपकी मांगे क्या हैं? दिल्ली किस वजह से आ रहे हैं?
दिल्ली इसलिए आ रहे हैं, 4 साल से सरकार नहीं हमको मिल रही। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें। C2+50 वाला जो फार्मूला है, पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो, बिजली के रेट घटाए जाए, बिजली फ्री दी जाए किसानों को, जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर इन्होंने हटा दिए उसको बहाल करा जाए, कानून में बदलाव करा जाए। जो फसल बीमा योजना है वो भी फेलियर रूप से साबित हो रही। गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा टाइम पे। ये सारे सवालों को लेकर हम लोग आए।
ऐसी खबरें आ रही थी कि कहीं रोका जा रहा है, सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा, क्या कुछ इस तरीके की चीजें भी आ रही हैं आपके सामने?
खबरें आ रही हैं, लेकिन कल जब वहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा क्या है।
जब आप दिल्ली में दाखिल होंगे तो कहाँ से दाखिल होंगे आप लोग?
ये यूपी गेट,
गाजीपुर की तरफ से आएंगे आप लोग। तो आप कह रहे हैं तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। टिकैत साहब, यहाँ तो एक बात आ गई, आपने पूरा कहा कि किसानों की जो बात है, लेकिन आपका आपको लेकर ये कहा जाता है कि आप लोग RLD से जुड़े हुए हैं और एक पॉलिटिकल उसके साथ जोड़ा जाता है, गठजोड़ जोड़ा जाता है, क्या राजनीतिक है इसका मकसद? क्या ये राजनीतिक है?
पता नहीं कौन कहता है राजनीति किसका, तो नॉन पॉलिटिकल संगठन है इसका, पॉलिटिकल उसका कोई मतलब नहीं है, ना पॉलिटिकल आदमी इसमें है। हमारा तो सबसे ये, हमारा तो राजनाथ सिंह से भी है, हमारा तो मुलायम सिंह से भी रहा, हमारा तो देवीलाल से भी रहा। फिर जो सत्ता में रहेंगे लोग उनसे संबंध तो रहेंगे ना हमारे, हमारे तो आज भी है, योगी जी से भी है हमारे। जब वे सरकार में शामिल है तो उनसे संबंध होंगे, सरकार अगर अखिलेश की होगी तो उससे संबंध होंगे, सरकार जिसकी होगी तो उससे संबंध तो होंगे। काम तो सरकार उससे ही करवाने हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएटेड संगठन नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही था और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा।
आपको रोका जाता है यूपी गेट पर, तो फिर क्या है आगे आपकी रणनीति?
और रोका जाएगा जब भी देखेंगे क्या करेंगे। काम तो सरकार को करना, हमारा तो विरोध करना ही तो है ना, कि सरकार हमारी बात सुने, और अगर सरकार नहीं सुनती तो हम क्या कर सकेंगे। सरकार को काम करना चाहिए, जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है दिया था उस पर काम करें। जनता दुखी है और हालात बेहद ज्यादा खराब गांव के लोगों की आज है, यही है हमारा सरकार से अपील।
ये थे किसान नेता राकेश टिकैत। और अब बात छत्तीसगढ़ की हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। यहाँ के छात्र बीते एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे थे। वो कुलपति से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। कल शाम कुलपति ने इस्तीफा दे दिया। क्या था पूरा मामला बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
5 minutes ago, a communication was made from Chancellor's office stating that Dr. Sukhpal Singh has resigned.
सोमवार की शाम रायपुर के हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जब कुलपति डॉक्टर सुखपाल सिंह के इस्तीफे की खबर आई तो घंटों तक विश्वविद्यालय में जश्न चलता रहा। इस खबर के बाद कहीं जाकर 7 दिनों से कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन और सोमवार को शुरू की गई भूख हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की गई। पिछले महीने भी पिंजरा तोड़ो नाम से शुरू किए गए आंदोलन में विद्यार्थियों की मांग थी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को 24 घंटे कैंपस के भीतर कहीं भी आने जाने की छूट मिले। इस दौरान 60 से भी अधिक लड़कियों ने अपने साथ यौन प्रताड़ना की शिकायत करते हुए मांग की थी कि आरोपी शिक्षकों को जांच तक निलंबित रखा जाए। इन मुद्दों पर कार्रवाई हो ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरोपों से घिरे कुलपति डॉक्टर सुखपाल सिंह को फिर से कुलपति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस खबर के बाद से ही छात्र फिर से प्रदर्शन कर रहे थे जिसका अंत सोमवार को कुलपति के इस्तीफे के साथ हुआ। स्टूडेंट्स बार एसोसिएशन के संवाद प्रमुख आकांश जैन का कहना था कि कुलपति का इस्तीफा यूनिवर्सिटी की आजादी से जुड़ा हुआ था।
आज 180 घंटे के प्रोटेस्ट के बाद और आज की भूख हड़ताल के बाद आज सुखपाल सिंह ने शाम को 6:30 पे इस्तीफा दे दिया है और ये हमारी वजह है। आज HNLU खुशी मना रहा है और आज हम सुखपाल सिंह से आजाद हैं। आज हमारा HNLU आजाद है।
स्टूडेंट्स बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष स्वाति भार्गव ने उम्मीद जताई कि यूनिवर्सिटी में जितने भी मामलों को लेकर विवाद है उन सब की जांच हो पाएगी।
इस आने वाले नए एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद करूंगी कि आने आने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में जो भी मुद्दे हमारे यहाँ चल रहे हैं या कास्ट रिमार्क्स के मुद्दे चल रहे हैं या करप्शन के मुद्दे चल रहे हैं उन सब में अब एक निष्पक्ष रूप से जांच होगी। क्योंकि अब जो आदमी करप्ट था, जो पूरा सिस्टम बेकार था, अब वो पूरा सिस्टम चला गया है। अब हम एक नए HNLU की, नए सुबह की और एक नई साफ सुथरी निष्पक्ष सुबह की हमें इंतजार है और हम जानते हैं कि वो सुबह बहुत जल्दी आएगी।
हमने इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुखपाल सिंह और दूसरे सरकारी अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इस्तीफे की पुष्टि के अलावा किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। वहीं छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने वाले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता और विधायक अमित जोगी ने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए।
यहाँ का जो कुलपति है बच्चों का पक्ष न लेकर जो दोषी है उनको बचा रहा है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सिस्टमैटिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। ये HNLU को सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक डेन बना दिया गया था और इसके सरगना कुलपति जी खुद थे।
कुलपति के इस्तीफे के बाद फिलहाल तो 7 दिनों से चला रहा छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है लेकिन संकेत है कि गंभीर आरोपों से घिरे कुलपति के खिलाफ कुछ सामाजिक संगठन हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तय है कि डॉक्टर सुखपाल सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
उधर मध्य प्रदेश में कुछ वक्त पहले राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले कंप्यूटर बाबा ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप भी लगाए हैं लेकिन कई लोग इसमें राजनीति देख रहे हैं। सुनिए शुरय नियाजी की रिपोर्ट।
इस साल अप्रैल माह में शिवराज सिंह चौहान ने 5 साधुओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। यह साधु नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने वाले थे लेकिन वह निकाल पाते उससे पहले ही उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। इनमें से एक कंप्यूटर बाबा थे लेकिन अब कंप्यूटर बाबा ने इस्तीफा सौंप दिया है और शिवराज सिंह चौहान पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने नर्मदा में अवैध उत्खनन को रोकने के बारे में कहा पर उनकी बात नहीं सुनी गई।
मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि शिवराज इतना धर्म विरोधी है। जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं मुझे लगता है नर्मदा यात्रा निकाल रहे, एक आदमी यात्रा निकाल रहे, नर्मदा की परिक्रमा कर रहे, तो मुझे लगता है कि बड़ा धार्मिक होगा। पर ये मैं सरकार में रह के देख लिया, ये संतों के प्रति दुष्टता रखता है, ये नर्मदा के प्रति ये अवैध खनन नहीं रोकने देता।
वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कंप्यूटर बाबा का यह कदम इसलिए था कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल रहे थे और जब उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद न रही तो उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया कहते हैं,
जिस तरह से कंप्यूटर बाबा ने इस्तीफा दिया है, फ्रॉम डे वन जब से वो उनको राज्य मंत्री का मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रकट होने लगी थी और वो चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, क्योंकि जिस तरह के संकेत मिल रहे थे कि ना तो कंप्यूटर बाबा को ना दूसरे बाबाओं को कैडर के ऊपर खड़ा करके टिकट नहीं दिया जाएगा, तो लगता है उन्हें लगा कि आचार संहिता लागू होने में थोड़े ही दिन बाकी है, ऐसे में गाड़ी घोड़ा सब छिन जाएगा, उसके पहले अगर शहीद हो जाए तो क्या हर्ज है।
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी। उससे पहले कांग्रेस ने 3 सितंबर को घोषणा की थी कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो प्रदेश भर की हर पंचायत में गौशाला बनाई जाएगी। शिव अनुराग पटेरिया का कहना है कि चुनाव के पहले विकास के मुद्दे पीछे चले जाते हैं और इसी तरह के मुद्दों को उठाया जाता है।
मध्य प्रदेश हो या पूरे देश के राजनीतिक दल हैं, पूरे 4.5 साल विकास की बात करेंगे, योजनाओं की बात करेंगे, जन कल्याण और दायित्व की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव के 4-6 महीने बचते हैं वो सेंटिमेंटल इश्यूज के ऊपर लौट आते हैं, रिलीजियस इश्यूज के ऊपर लौट जाते हैं और सारा चुनाव जो है वो धार्मिक या ये कहा जाए हिंदू मुसलमान होने लगता है और उन्ही मुद्दों की तरफ राजनीतिक दल लौटने लगते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है।
मध्य प्रदेश में अगले माह चुनाव है और हर पार्टी इस वक्त लोगों को धर्म की बात करके लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भाजपा को उसी के मुद्दों के जरिए शिकस्त देना चाहती है, यही वजह है कि पार्टी गौशाला और राम वन पथ गमन जैसे मुद्दों को लगातार उठा रही है। इस वक्त दोनों पार्टियां अपने आप को हिंदू हितैषी बताने में जुटी हुई हैं। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
और अब गुरप्रीत सैनी बताएंगी आज के अखबारों की सुर्खियां। जी गुरप्रीत
जी, दिल्ली कूच करने आ रहे किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, ये खबर कई अखबारों के पहले पन्ने पर तस्वीर सहित छपी है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि जब किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो उस वजह से बहुत ही लंबा और भयंकर जाम लगा हुआ है, ये कई अखबारों में तस्वीर दिख रही है।
दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पर बड़ा जाम था
जी। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंदी से मुक्त करने के आदेश दिए हैं, ये खबर जनसत्ता अखबार में देखी जा सकती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा आज रिटायर हो रहे हैं, उच्चतम न्यायालय परिसर में आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका दुनिया में सबसे अधिक सुदृढ़ संस्था है, उन्होंने कहा कि न्याय का मानवीय चेहरा होना चाहिए
जी।
इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर दिख रही है जिसमें कि एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी के परिजनों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उन्होंने परिवार के मुआवजे को 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया है। हालांकि विपक्ष
तिवारी की मौत हो गई थी 2 दिन पहले
जी जी, हालांकि विपक्ष ने अभी भी सरकार के इन आश्वासनों को नाकाफी बताया है। इसके अलावा एक और खबर दिख रही है कि नीरव मोदी जो हैं, ईडी ने पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और उनके परिवार के खिलाफ भारत समेत 5 देशों में कार्रवाई की है। इस दौरान 637 करोड़ रुपए की संपत्ति और बैंक खातों को अटैच किया गया है, यानी कि मतलब उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई इसको माना जा सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में एक और खबर दिख रही है जिसके मुताबिक गुजरात के गिर वन्यजीव अभयारण्य में अलग अलग वजहों से अब तक 21 शेरों की मौत हो चुकी है।
बहुत शुक्रिया गुरप्रीत सैनी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के 2 दशक बिताए, वहां उन्होंने एक वकील के रूप में नाम कमाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के शुरुआती प्रयोग भी दक्षिण अफ्रीका में ही किए। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में उनकी विरासत को कौन सहेज रहा है, बता रहे हैं डरबन का दौरा करने वाले बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
महात्मा गांधी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे, आज दक्षिण अफ्रीका में उनकी विरासत कितनी बची है, यहाँ उनका नाम लिया जाता है या नहीं? डरबन और जोहान्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में गांधी जी को भूलना आसान नहीं। यहाँ के कई चौराहों और बड़ी सड़कों पर शब्द गांधी जड़ा है, उनकी प्रतिमाएं लगी हैं और उनके नाम के संग्रहालय बने हैं। कहा जाता है कि भारत के बाहर सबसे अधिक भारतीय मूल के लोग इसी शहर में आबाद हैं और हिंद महासागर के किनारे बसे इस शहर में गांधी जी ने 1893 में अपने कदम रखे थे। इला गांधी अपने दादा की गोद में खेल चुकी हैं, तब वो केवल 7 या 8 बरस की थीं। वो परिवार के उन चंद जीवित सदस्यों में से हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ समय बिताया है।
1947-48 उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। वो बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन फिर भी वो आश्रम में बच्चों के लिए रोज समय निकालते और उनसे मिलते। मुझे याद है कि हम भारत के दौरे पर गए थे, हम उनके साथ पुणे के आश्रम में रह रहे थे। मुझे रोज कद्दू की सब्जी दी जाती थी। मैंने उनसे शिकायत की तो उन्होंने आदेश दिए कि बच्चों के लिए दूसरी सब्जियां भी बनवाए जाएं। तो बापू बच्चों से प्यार भी करते थे और उनकी सुनते भी थे, ये बात मुझे आज तक याद है।
इला गांधी के पिता मनीलाल गांधी जी के 4 बेटों में से दूसरे नंबर पर थे। गांधी जी के 1914 में भारत लौटने के बाद वो डरबन में इस आश्रम की देखभाल करने यहीं रह गए। इला गांधी का इसी आश्रम में 1940 में जन्म हुआ था और उनकी परवरिश भी यहीं हुई थी। गांधी जी 1893 में 24 साल की उम्र में एक वकील की हैसियत से यहां आए थे। उसी समय उन्होंने डरबन के निकट एक ईसाई आश्रम का भी दौरा किया था, जिससे वो काफी प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने उसी तर्ज पर फीनिक्स में अपने आश्रम की स्थापना की, जहां उनके दर्जनों भक्त एक साथ रहते थे। इला गांधी कहती हैं कि आश्रम में उन्होंने 3 बातें लागू की।
And the one was about community, moving away from individual to community.
एक था व्यक्तिगत से हटकर समुदाय पर ध्यान, एक साथ रहने पर जोर। दूसरी बात थी कि सब काम बराबर हैं, और तीसरी कि अपना सारा काम खुद करना है।
ऐसा समझा जाता है कि भारत में गांधी जी के आलोचकों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या इला गांधी को ये सुनकर दुख होता है?
लोग कह सकते हैं कि गांधी जी नस्लवादी थे, हम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गांधी जी की पूजा करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं।
आश्रम में गांधी जी का बनाया घर अब नहीं है, लेकिन उसी नक्शे का एक 3 कमरे का नया मकान है। इला गांधी भावुक होकर कहती हैं कि ये देखिए, ये हम लोगों का रसोई घर था, इस कमरे में मैं पैदा हुई, अब ये घर एक संग्रहालय है। मिलिए गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी से। ये युवा इला गांधी की बड़ी बहन सीता गांधी के परिवार से हैं। सीता गांधी इनकी नानी और दादी थी, वो इस दुनिया में अब नहीं है। कबीर थुपेलिया 27 वर्ष के हैं और डरबन में एक बैंक में काम करते हैं। उनकी बहन मिशा थुपेलिया उनसे 10 साल बड़ी हैं और एक स्थानीय रेडियो स्टेशन में संचार विभाग में काम करती हैं। वो खुद को भारतीय महसूस करते हैं या दक्षिण अफ्रीकी? सुनीता मेनन कहती हैं,
आई थिंक पीपल ऑफन सडनली विल हैव दिस।
जब लोगों को हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि अब उन्हें ये समझ में आया कि हम लोग सियासत के प्रति इतने उत्साहित क्यों हैं। इन सबको एक संदर्भ में समझने की जरूरत है। हम जिस जगह तक पहुंचे हैं उसमें उनका थोड़ा बहुत ही योगदान है।
इला गांधी जब दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थीं, तो वो और नेल्सन मंडेला जैसे नेता इसी विरासत पर भरोसा कर रहे थे, और इला गांधी इस विरासत की रक्षा आज भी कर रही हैं।
दुबले से पतले से थे वो, चलते सीना तान गए।
जुबैर अहमद, BBC, डरबन, दक्षिण अफ्रीका।
जुबैर अहमद की रिपोर्ट पर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारतीय मूल की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। आप गीता के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आएं bbchindi.com पर। और अब चलते चलते मुख्य समाचार गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया है। उन्होंने कहा कि भारत उन्हें खुश करने के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करना चाहता है। ट्रंप के बयान पर अभी तक भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट को और गहरा होने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। शुक्रवार को सुनामी और विनाशकारी भूकंप की चपेट में आए इंडोनेशिया ने खाने, दवाइयों और भारी उपकरणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। कैटलोनिया में हजारों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। ये प्रदर्शनकारी बार्सिलोना और अन्य शहरों की मुख्य सड़कों पर स्पेन से आज़ादी के लिए हुए विवादित जनमत संग्रह की पहली बरसी मना रहे थे। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे शाकिर आलम। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।